लेकिन वो जो आम मुसलमान वजू कर रहा था तो उसका इस्तेमाल शुदा पानी इमाम साहब की तरफ से होकर गुजर रहा था। उसके दिल में आया कि मेरा इस्तेमाल शुदा पानी इमाम साहब की तरफ जा रहा है, ये तो बेअदबी है। वहां से उठ करके दूसरी जानिब बैठ गया। अल्लाह ताला को उसका ये अदब करना इतना पसंद आ गया, अल्लाह ने उस अदब पर ही उसकी मगफिरत कर दी। बात आ रही समझ? अदब इतनी बड़ी चीज, अदब इतनी बड़ी चीज है। इसके लिए भाई जिंदगियों में आदाब पैदा करना, और ये जो सारी मजलिसें और मेहनत है उसी की है। इसलिए दीन की मजलिस का भी अदब है, दीन की मजलिस का भी अदब है और हक है। एक सुनने का हक है, कहने का हक है। जब ये दोनों हक अदा हो जाएंगे तो अमल की तौफीक मिल जाएगी। सुनने का भी हक है। सुनने का हक क्या है? सुनने का हक ये है कि वल हक अयुद्दबा, जो हक बात सामने आए उसको माना जाए। क्या करना है? जो हक बात सामने आए उसको मानना, ये हक सुनने का हक है। कहने का भी हक है, जो बात कही जाए वो हक होनी चाहिए, जो बात कही जाए वो हक होनी चाहिए। दूसरा फरमाया वो हक बात हक नीयत के साथ कहनी चाहिए, नीयत अपनी बढ़ाई जाता ना, या और कोई गरज ना हो, बल्कि हक बात हक नीयत के साथ कहनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के जज्बे से, और हक तरीके से कहनी चाहिए। बाज मतलब बात भी हक होती है, नीयत भी हक होती है, लेकिन तरीका सही नहीं होता है। तो तरीका सही न होने की वजह से हमें वो बात दिल तक नहीं पहुंचती। इसलिए तीनों बातें जरूरी है, हक बात हो, हक नीयत के साथ हो, और हक तरीके से हो, वो बात जरूर असर करती है। इसलिए कहने का भी हक है, सुनने का भी हक है। अल्लाह हम सब को ये तमाम हुकूक की रियायत के साथ उस पर चलने की तौफीक दे। इसके साथ अपनी नीयत बड़ी बना लो। नीयत क्या बना लो? नीयत बड़ी बना लो। जो फरमाया नीयतुल मोमिन खैरु मिन अमल, मोमिन की नीयत तो उसके अमल से बढ़ करके, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो क्या नीयत बनाना बुजुर्ग? फरमाया ये नीयत बनाना कि जो बातें हमारे सामने आएगी उसको ध्यान तवज्जो के साथ सुनेंगे और उसको जिंदगी में लाएंगे, जिंदगी में लाते हुए उसको पूरी दुनिया में पहुंचाएं। कितनी बड़ी नियत हो गई, कितनी बड़ी नियत हो गई। अगर खाली इस नियत से बैठे हुए दीन की बात सुनेंगे तो कितनी बड़ी खैर से हम महरूम रहे। बात आ रही समझ? और ये नियत की कि भाई जो बात हमारे सामने आएगी उसको ध्यान तवज्जो के साथ सुनेंगे भी, उसको जिंदगी में लाएंगे और लाते हुए पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। अब पूरी दुनिया में कैसे पहुंचाएंगे? पूरी दुनिया में तो जा नहीं सकते, लेकिन नियत तो कर सकते हैं। नियत कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में, और नसीब है इस वक्त में जितने इंसान हैं, बल्कि कयामत तक के जितने आने वाले इंसान हैं, उन तक अल्लाह हमारी बात को पहुंचा दे। पहुंचाने वाला कौन है भाई? अल्लाह है। हमारे बस में जितना है वो हम करने के मुकल्लब हैं, अल्लाह फिर आप उसके बस में जो वो कर लेगा, अल्लाह के बस में जो हो वो कर लेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ जब बैतुल्लाह की तामीर हुई, अब आवाज लगाओ ये लोग इस घर को आ रहे हज करने को, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त में स्पीकर वगैरह थोड़े ही थे और ये मुआसलात का निजाम थोड़ा ही था, बोले मेरी आवाज कौन सुनेगा? अल्लाह ताला ने कहा आवाज लगाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना हमारा काम। आवाज लगाना हमारा काम है, पहुंचाना हमारा काम है। तो हमारे बस में जितना है वो हम कर ले, फिर आगे अल्लाह अपने बस में जो, और अल्लाह के बस में तो सब कुछ है। चुनाचे आवाज लगाई, इस आवाज लगाने पर उस जमाने में जितने लोग मौजूद थे अल्लाह ने वो आवाज वहां तक पहुंचाई। जो बच्चे हवल में थे वहां पहुंचाई, जो अरवा जो रूहे आलम अरवा में थी अल्लाह ने वहां पहुंचाई आवाज को, और उनकी आवाज पर जिसने भी लबैक कहा अल्लाह उसको बैतुल्लाह की हाजिरी जरूर अता करता, और जिसने जितनी मर्तबा लबैक कही होगी उतनी मर्तबा अल्लाह उसको वहां पहुंचाएंगे। अल्लाह हमें भी उन खुश नसीबों में बनाए जिन्होंने दमा दम लबैक कही हो। बात आई समझ? आवाज किसने पहुंचाई है? मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बमरे वाली मस्जिद से आवाज लगाई। हालांकि अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में वहां गए नहीं गए, लेकिन आवाज पहुंचाई। बस ये नियत के साथ में बैठना। किस नियत के साथ बैठना? हालांकि नहीं गए हो लेकिन अल्लाह ने उनकी आवाज को पहुंचा दिया। ऐसे मैं और आपकी इतनी बड़ी नियत करके बैठना, जहां तक जा सकेंगे वहां जाएंगे, जहां तक नहीं जा सकते हैं अपनी बस्ती में आने वाली जमातों पर मेहनत करेंगे, दुआएं करेंगे, ठीक है भाई? इंशाल्लाह। और उसके लिए फिर अखीर में जब तकाजा रखा जाए इस काम के लिए, अल्लाह की बात को पहुंचाने के लिए, तो उसमें अपनी जान और माल को बचाना नहीं बल्कि पेश कर देना, करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बड़ा मुबारक मजमा है, अल्लाह ताला कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يدري. وقال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. देखो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, हमने जिस अल्लाह को अपना रब माना है वो अल्लाह बहुत बड़े बहुत बड़े, अपनी जात में भी बड़े, अपनी सिफात में भी बड़े। उसकी जात की भी कोई हद नहीं, उसके सिफात की भी कोई हद नहीं, जात का भी कोई मिसल नहीं और सिफात का भी कोई मिसल नहीं। लैसा कमिस्लिही शय, वो जैसा जात में भी कोई नहीं है और वो जैसा सिफात में भी कोई नहीं। हर सिफत में बड़े हैं अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अपनी हर सिफत में बड़े हैं, पैदा करने में बड़े, पैदा करने वाली जात से तने तना अल्लाह की। खालिक कौन है भाई?
अल्लाह।
बनाना किसी मखलूक का काम नहीं, बनाना सिर्फ अल्लाह का काम। इंसान और जिन्नात ये क्या कर सकते हैं? इंसान क्या कर सकता है? में लकड़ी है तो लकड़ी को छील कर काट कर कुर्सी बना दे, लेकिन सारे इंसान और जिन्नात मिलकर लकड़ी का एक टुकड़ा पैदा कर सकते हैं? इंसान इतना कर सकता है कि लोहे को साफ करके ऐसा माइक बना दिया, कीली बना दी, माइक बना दिया, और चीजें बना दे, लेकिन क्या ये कर सकता है कि पूरे इंसान और जिन्नात मिलकर एक सल्ली और लोहे का एक टुकड़ा बना दे? उसके बस में नहीं। पैदा करना ये सिर्फ एक अकेले अल्लाह का काम, खालिक अल्लाह की जात, पैदा करना अल्लाह का काम। और पैदा करना अल्लाह जो पैदा करते हो अपनी कुदरत से पैदा करते, और उसके पैदा करने का अंदाज निराला है, बनाने का अंदाज, पैदा करने का अंदाज निराला है। बगैर सबब के पैदा कर दे, बगैर सबब के। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, बगैर सबब के अल्लाह ने बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी का पुतला तैयार किया और उसमें अल्लाह ने रूह डाल दी, भले चंगे इंसान बन गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद हर इंसान की जरूरत है औरत की, जन्नत की इतनी सारी नेमतें थी, लेकिन दिल में जैसा वो सुकून और वो जो चीज चाहिए वो नजर नहीं, वो नहीं थी। क्यों? इसलिए कि एक चीज अधूरी है। औरत की जरूरत है इंसान को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से हजरत हव्वा रजी अल्लाह अन्हा को पैदा फरमाया। बात आ रही है, कहाँ से पैदा फरमाया? अल्लाह बड़ी कुदरत वाले, कोई सबब नहीं था, बगैर सबब के पैदा किया। फिर अल्लाह ने निजाम चलाया कि दुनिया में नस्ल जो चलेगी वो मर्द औरत के मिलाप से नस्ल चलेगी। इस रास्ते से भी अल्लाह ही पैदा करते हैं, असबाब के बगैर भी अल्लाह पैदा करते हैं, असबाब के पर्दे में भी अल्लाह पैदा करते हैं। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं अफरायतुम मा तुमनून अंतुम तखलुकूनहू अम नहनुल खालिकून। ये बताओ कि जो तुम मनी टपकाते हो उससे इंसान तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? अल्लाह कहते हैं हम पैदा करने वाले। कौन पैदा करने वाले? हम पैदा करने वाले हैं। असबाब के पर्दे में अल्लाह ही पैदा करते हैं। इसलिए अल्लाह ने अपनी बादशाहत समझाई। आसमानों और जमीनों की बादशाहत हमारी है और वो जिसको जो देना चाहे वो दे। मियां बीवी का निकाह हुआ, किसी को अल्लाह लड़के देता है, किसी को लड़कियां देता है, किसी को अल्लाह दोनों देता है, किसी को कुछ भी नहीं देता। तो अगर ये मियां बीवी के मिलाप से ही इंसान बच्चों की पैदाइश होती तो इनको क्यों नहीं मिलता? सारे रिकॉर्ड बराबर है, मर्द का रिकॉर्ड भी बराबर है, औरत का रिकॉर्ड भी बराबर है, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा। क्यों? ऊपर से हुक्म नहीं, ऊपर से हुक्म नहीं है। वो देने का निजाम ऊपर से चलता है कि जिस किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे, किसी को कम दे किसी को ज्यादा दे। एक मौली साहब थे, वो पढ़ाते थे किसी जगह पर, दूर पढ़ाते थे, साल में एक हफ्ता घर आते थे। और जब घर आवे तो हर साल बच्चा, घर आवे तो हर साल बच्चा। एक मतलब सोचा ये क्या लगा रखा है हर साल बच्चा। बोले अब तो दो साल पर आऊंगा घर पे, अब दो साल पर घर पे आऊंगा। दो साल के बाद आए तो अल्लाह ने जोड़वा पैदा किया, जोड़वा मेरे और आपके बस की बात है। ऊपर से निजाम चलता है, बात आई थी भाई, इसका निजाम चलता है। तो पैदा करने वाले अल्लाह, और वो बड़ी कुदरत वाले पैदा करते, पैदा करने में उसका अंदाज निराले है। कुछ अरसे के बाद हजरत ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, बगैर बाप के। मरियम अलैहि सलाम को फूका हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ने और बच्चे की तौलीद हो गई। जब आए इंसानी शक्ल में मरियम के पास में तो हजरत मरियम कहने लगी मैं तो अल्लाह से पनाह मांगती हूँ, तुमसे अल्लाह की हिफाजत मांगती हूँ। बोले मैं तो अल्लाह का भेजा हुआ हूँ और इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जो है एक बच्चे का बशारत सुनाऊं। वो कहने लगी मुझे बच्चा कैसे होगा, ना मुझे कोई इंसान ना मैंने निकाह किया है और ना मैंने बुरा कोई काम किया है, मेरे को बच्चा कैसे होगा? बोले यूं ही हो जाएगा, अल्लाह के अमर से हो जाएगा। और ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। सालेह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, सालेह अलैहि सलाम ने अपनी कौम को दावत दी कि देखो उस अल्लाह को मानो, उस अल्लाह की मानो, वो बड़ी ताकत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है, बड़े खजानों वाला है, वही करता धरता है। अल्लाह के अलावा जो कुछ भी नहीं है उससे कुछ भी नहीं होता। इल्लल्लाह, एक अकेला अल्लाह ही है, उसी से सब कुछ है। उसको मानो, उसकी मानो, उसी से मांगो। कौम की समझ में बात नहीं। आखिर में उन्होंने मुआजिजा मांगा, नबी से मुआजिजा मांगा, फरमाइशी मुआजिजा। और अल्लाह का निजाम ऐसा था कि जब कोई फरमाइशी मुआजिजा मांग लिया और फिर भी ईमान न लाए तो फिर अल्लाह न मानने पर हलाक कर देता था। चुनांचे सालेह अलैहि सलाम की कौम ने ये फरमाइशी मुआजिजा मांगा, ए सालेह एक काम करो, ये फुलानी जो पहाड़ की चट्टान है उसमें से गाभन उठनी निकले और बच्चा देवे तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। नबी के नबी हमदर्द होता है, शफकत होती है, कि किसी तरह मेरी कौम मान जाए, ये जज्बा होता है नबी के दिल में। चुनाचे हजरत सवाले ने सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, हालांकि आम तरतीब अल्लाह की नहीं है, आम तरतीब अल्लाह की नहीं है, अल्लाह की कुदरत बड़ी है। चुनाचे हजरत सवाले ने सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, उस चट्टान में से गाभन उठनी निकली और बच्चा दिया, बच्चा दिया, लेकिन इतना देखने के बावजूद ईमान नहीं लाए, इतना देखने के बावजूद ईमान नहीं लाए, अल्लाह ने अपने कुदरत से निकाला। लंबा वाकया है, मुख्तसर ये, अब ये उठनी निकली, उठनी निकलने के बाद बच्चा भी दिया, फिर भी नहीं माने, अब ही नाकतम था, वो नाकतम था यानी अल्लाह की उठनी थी वो, तो जो कुआ जिस कुएं से वो लोग पूरे बस्ती वाले पानी पीते थे, वो उठनी पूरा पानी पी जाती है, पूरा पानी, अल्लाह की उठनी, अल्लाह की उठनी, अल्लाह की शान बड़ी, तो पूरा पानी पी जाती। अब ये एक तरफ माने नहीं, दूसरी तरफ इनको ये तकलीफ। हजरत सालेह अलैहि सलाम ने उसकी तरतीब ये बताई, ये देखो एक एक दिन उठनी का वो जो है पानी वो कुएं से पिएगी, और एक दिन बस्ती वालों का, वो जितना पानी है वो सब अपने बर्तनों में भर ले, दूसरे दिन उठनी पिएगी, ये तरतीब कायम की। और अल्लाह की शान ये कि ये पानी पीकर दूध इतना देती थी कि बस्ती वालों को जितनी दूध की जरूरत होती उतना दूध उनको मिल जाता था। बात आ रही समझ में? ये अल्लाह की नेमत थी, दूध की जरूरत पूरी हो रही थी, हर एक के जितने बर्तन हो जितना दूध चाहिए वो दूध उस रुकनी से मिल जाता था। लेकिन पानी तो इस तरह तरतीब, लेकिन जिसके दिल में कसावत होती है, अल्लाह को नहीं मानते, इतना बड़ा मौजिजा देखने के बाद ही नहीं माने, ऊपर से इसको कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगे। चुनाचे एक औरत थी उस बस्ती में खूबसूरत, इसलिए औरत का चक्कर बहुत खतरनाक चक्कर है, औरत का चक्कर बहुत खतरनाक चक्कर है। चुनाचे उस औरत ने जो खूबसूरत थी, उसकी लड़की भी खूबसूरत थी, उसने कहा जो इस उठनी को कत्ल कर दे वो मैं उसकी हूं। चुनाचे दो बदबख्त तैयार हुए और उन्होंने उस उठनी को कत्ल कर दिया। जैसे ही कत्ल किया, हजरत सालेह अलैहि सलाम ने उस कौम को कहा, तुम तीन दिन से ज्यादा आप नहीं बच सकते, अब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा। चुनाचे तीन दिन, पहले दिन में उनके चेहरे सुर्ख हो गए, फिर जो है वो पीले पड़ गए, और तीसरे दिन में उनके काले पड़ गए, और फिर अल्लाह के यहां से अजाब का घोड़ा बरसा और सारी कौम तहस नहस हो गई। बात आ रही समझ? अल्लाह के पैदा करने के अंदाज मिला ले, ये जो तरतीब है मियां बीवी के रास्ते से, इसके रास्ते से जो होता है वो भी अल्लाह करता है, असबाब के पर्दे में भी अल्लाह करते, बगैर सबब के भी अल्लाह करते। सबसे पहले जो दुनिया में मुर्गी पैदा हुई, किसने पैदा की भाई?
अल्लाह।
फिर उसके बाद निजाम चलाया अल्लाह ने कि मुर्गी को चाहिए तो उसके लिए वो तरतीब है। सबसे पहली भैंस किसने बनाई? अल्लाह ने। उसके बाद निजाम चला के भैंस दुनिया में, उसके बढ़ने का अल्लाह ने एक सुन्नत चलाई, इसलिए कि अल्लाह ने इसको हिकमत के माध्यम चलाया। कैसे चलाया है? हिकमत के माध्यम से। ऐसे ही जमीनों से अल्लाह निकलता है, ये कौन निकालता है? अल्लाह निकालता है। इसलिए अल्लाह समझा रहे हैं, अफरायतुम मा तअरसून अंतुम तज़रऊनहु वा नहनु ज़ारिऊन लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फज़ल्तुम तफक्करून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून। तो ये बताओ, इस जमीन में तुम दाने डालते हो, ये तुम उगाते हो कि हम उगाते हैं? कौन उगाता है भाई? इंसान के बस में इतना है, हल चलाकर उसमें दाना डाल दे, अब उसको गलाना, उसमें कुंपल का निकालना, उसकी बालियां बनाना और उसको खड़े करना, ये कौन करता है? अल्लाह कहते हैं हम करते हैं, जमीन को फाड़ कर जो है पौधा हम निकालते हैं, और फिर साथ ही साथ अल्लाह कहते हैं हिफाजत भी हम करते हैं। अगर हम इसकी हिफाजत न करें और हम इसके ऊपर कोई अलावा डाल दें जिसके नतीजे में पूरा चूरा बना देवे, तो तुम दिन भर हाथ मलते रहोगे और हाथ मल करके बातें बनाते रहोगे, अरे आज तो हमारी इस मर्तबा की सीजन तो हमारी फेल हो गई, जो लगाया था पूंजी वो भी खत्म हो गई, अरे हम तो कर्जदार हो गए। ये उम्मीद थी कि यहाँ से आएगा पैसा इतना, ये कर्जा चुकाएंगे, तो कर्जा क्या चुका के जो अंदर डाला था वो भी जाए, हो बातें तस्वीर बनाने वाले बड़े जबरदस्त मुसव्विर है। मुसव्विर पैदा कैसे करते है, मैं पैदा भी अल्लाह ने हमको कैसे किया, बेकदर पानी से अल्लाह ही ने तुमको बनाया है, तीन तीन अंधेरियों में बनाया। आज दुनिया में अगर किसी को कोई चीज बनानी हो, मिल में, कंपनी में, फैक्ट्री में, तो लंबी जगह का इंतजाम करता है, कुर्सी का इंतजाम करता है, कुर्बान जाए अल्लाह की कुदरत पर। फरमाया मुझे और आपको बनाने के लिए इतनी तंग जगह में बनाया, और मैं अगर पाव लंबा करना चाहे तो पाव लंबा नहीं कर सकता। अंधेरा कितना, तीन तीन अंधेरिया, पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, फिर वो झिल्ली जिसमें बच्चा होता है वो झिल्ली का अंधेरा, तीन तीन अंधेरे में अल्लाह बना रहे। और कैसे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, फरमाया निम्मा इम्बहीन मिन नुत्फा, बेकदर पानी पर अल्लाह तस्वीर बना रहे, सुभान तेरी कुदरत। इसलिए तो अल्लाह कह रहे हैं वो भी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ऐ इंसान तू अपनी जात में गौर कर, तू अपनी जात में गौर करेगा तो भी मुझे पा लेगा, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू अपनी जात में गौर करेगा तो भी मुझे पा लेगा। पानी है पानी, बेकदर पानी, उसको अल्लाह खूने बस्ता बनाते हैं, खूने बस्ता को फिर गोश्त का लोतला, उस गोश्त के लोतले में हड्डियां अल्लाह करते हैं, और चार महीने में वो तैयार होने के बाद अल्लाह उसके अंदर रूह डालते हैं। उसी में अल्लाह ने आंखें बनाई, कान बनाए, जबान बनाई, हाथ पैर बनाए, और भला चंगा इंसान बनाया, और इंसान और किस पर, पानी पर अल्लाह ने तस्वीर बनाई। और दुनिया में अल्लाह ताला ने आसान रास्ते रास्ते को आसान करके दुनिया में पहुंचाया, और सबकी शक्लें अलग, एक ही माँ बाप के पांच बेटे हैं, सबकी शक्लें अलग, सबकी बोली अलग, सबका लहजा अलग। अगर सबका लहजा एक तरीके का होता, पांच बेटे होते और पांचों का लहजा एक तरीके का होता, और बेटा अम्मा से कहता अम्मा चाय दो, तो अम्मा को पता ही नहीं चलता कि हिफ्ज़ुर रहमान की आवाज है, कहता हूँ रहमान की आवाज है। क्यों भाई, अल्लाह ने सबका लहजा अलग बनाया, फिर जवान का लहजा अलग, बूढ़े मियाँ बड़े मियाँ का लहजा अलग, मर्द का लहजा अलग, औरत का लहजा अलग। सुभान तेरी कुदरत, यानी कितनी बड़ी कुदरत वाले अल्लाह है, कितनी बड़ी कुदरत वाले अल्लाह है, कितने बड़े खजानों वाले अल्लाह है, और कितनी बड़ी ताकत वाले अल्लाह है। हर नबी को अपनी अपनी उम्मत को जो समझाते वो अल्लाह समझाते, किसको समझाते भाई, अल्लाह की मारिफत करवाते हैं कि इतने बड़े अल्लाह को पहचानो, जिस अल्लाह ने सात आसमान बनाए, और कैसे बनाए भाई, हमें इतना पिंडाल खाली बनाना है तो इसके लिए देखो कितनी कितनी बल्लियां और कितने ये जो है पाइप लगे हुए है। सुभान तेरी कुदरत, खलक السماوات بغیر عمد, अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान बनाया और कहीं एक सुतून भी नहीं है, और अल्लाह मुझे और आपको दावत दे रहे हैं कि अपनी नजर उठाकर देख और बार बार देख, बार बार देख, तुझे अल्लाह की इस पैदा करने में कोई कमी नजर नहीं आएगी, इतने साल हो चुके इसमें दरार नहीं पड़ी। सुभान तेरी कुदरत, और अल्लाह के अम्र से थमा हुआ है, अल्लाह ही पैदा करने वाले है, खालिक वो है, और रब भी वही है, कयूम है वो, कयूम यानी थामे हुए सारी चीजों को, उसके अम्र के साथ सारी चीजें जुड़ी हुई है। बात आई से भाई, तो पैदा करने वाले अल्लाह, मालिक भी अल्लाह है, سب کے اوپر اللہ کی ملکیت ہے اور متصرف بھی اللہ ہے, سب کے اوپر چلتی بھی اللہ کی. مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا تو ہمارے مالک بھی اللہ ہے, ہمارے اور آپ پر چلتی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی چلتی ہے. ہمارے آپ کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے. میں اگر میرے اوپر میرا کنٹرول چلتا, آپ کو کنٹرول چلتا تو بتاؤ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں؟ جی بھائی کوئی آدمی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا کہ میں بوڑھا ہوں, لیکن ہو جاتا ہے. کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں؟ کوئی آدمی نہیں چاہتا, بیمار ہو جاتا ہے. کوئی آدمی چاہتا ہے میرے بال سفید ہو؟ جی بھائی کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا, لیکن اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کون کر رہا ہے؟ میں سب کی پیشانیاں اس کے قبضے میں, سب کے دل اس کے دو انگلیوں کے بیچ میں, اور پوری کائنات اس کی مٹھی میں. بات آئی سمجھ؟ تو کیوں نہیں, مخلوق سے وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے, مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے. اس لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں. بڑا کون ہے بھائی؟ اللہ اکبر. اور وہ بڑا کسی کے بنانے سے نہیں ہے. دنیا میں تو بستی والے مل کر کسی کو چودھری بنا دیا, سرپنچ بنا دیا, اور علاقے والے کسی کو اپنا اور بڑا بناتے ہیں, ملک والے مل کر کسی کو اور بڑا بناتے ہیں, لیکن وہ کسی کے بڑا بنانے کی وجہ سے بڑا نہیں ہے. کوئی اس کو بڑا مانے کہ نہ مانے وہ اکبر ہے. کوئی اس کی بندگی کرے کہ نہیں کرے وہ معبود ہے. کوئی اس کی تعریف کرے کہ نہ کرے وہ حمید ہے. کوئی اس کی بزرگی بیان کرے کہ نہ کرے وہ مجید ہے. کوئی اس کو سجدہ کرے کہ نہ کرے وہ مسجود ہے. وہ اپنی ذات میں بڑا ہے, کسی کے بڑا بنانے کی وجہ سے. اور کیسا بڑا ہے؟ کیسا بڑا؟ فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. فرمایا سمندر کا پانی روشنائی بن جائے, دنیا میں درخت ہے وہ قلم بن جائے, اور اس سے تم اس کی بڑائیاں اس کی خوبیاں لکھنا شروع کرو. فرمایا ایک سمندر ختم ہو جائے, دوسرا لاؤ, تیسرا لاؤ, چوتھا لاؤ, پانچواں لاؤ, چھٹا, تمہارے بس میں جتنا اتنا لاؤ, اور اس کی خوبیاں لکھنا, اور کلمات کو لکھنا, علم کو لکھنا شروع کرو. فرمایا یہ سب ختم ہو جائیں گے مگر اس کی بڑائی اور اس کے کلمات ختم نہیں ہوئے. اللہ اکبر سے بڑا وہ اللہ ندا لگواتا ہے ہر نماز کے موقع پر, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے, اللہ سب سے بڑے. اے مشرق کے رہنے والوں, مغرب کے رہنے والوں, شمال و جنوب کے رہنے والوں, کوئی بڑا نہیں. بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. اس کی بڑائی ہمارے دلوں میں آ جائے, اس کے خزانے بڑے, اس کی طاقت بڑی. لہو مقاریب السماوات والارض, آسمان اور زمین کے چابیاں اس کے پاس نہیں. وللہ خزائن السماوات والارض, زمین اور آسمان کے خزانے اس کے پاس نہیں. وللہ جنود السماوات والارض, آسمان اور زمین کا لشکر اس کے پاس نہیں. کیسا لشکر؟ اگر ایک فرشتہ ایک چھینک مارے تو سارے انسان ختم. اللہ نے خالی ایک آیت میں اپنے چار ایٹم بم بیان کیے. چار ایٹم بم کتنے؟ ایک ہی آیت. پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے, قوم عاد کے, قوم ثمود کے, قوم لوط کے, قوم اسی طرح پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے قرآن. اور بیان کرنے کے بعد اللہ یوں کہہ رہے, فَكُلَّنَ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے انسانوں کو میری بڑائی سمجھانے کے لیے بھیجا, کہ اللہ کہ نبی آ کر انسانوں کو میری بڑائی سمجھائے, اللہ کی بڑائی سمجھائے کہ اتنے بڑے اللہ, کتنی بڑی طاقت والا, کتنی بڑی قدرت والا, کتنے بڑے خزانوں والا, اسی کو مانو, اسی کی مانو, اسی سے مانگو. یہ بات نبی نے سمجھائی, مگر سمجھ میں نہیں آئی. اوپر سے نبی کے مقابلے پر آئے, نبی کے مقابلے پر آئے. اور دیکھو یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا, ہوتا رہے گا. اتنا ہی نہیں بلکہ جب نبی نے ان کو سمجھایا, نبی نے ان کو دعوت دی اللہ کی بڑائی کی تو اوپر سے کیا کہنے لگے, وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سبحان الله. اللہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی نے جب ان کی امتوں کو یہ بات سمجھائی, ارے اتنے بڑے اللہ کو مان لو, اتنے بڑے اللہ کی مان لو, اسی سے مانگنا اسی سے لینے کا نظام قائم کر لو. سمجھ لیجیے ماننا تو دور کی بات رہی, یہ اوپر سے نبیوں کو دھمکیاں دینے لگے. کیا دھمکیاں دینے لگی, ارے ہمارے ملک سے نکل جاؤ, ہمارے ملک سے نکل جاؤ, ہمارے ملک میں رہ نہیں سکتے, اگر تمہیں ہمارے ملک میں رہنا ہے تمہارا دین چھوڑ دو, ہمارے دھرم میں آ جاؤ. یہ ہر زمانے میں کہا ہے, اللہ سنا رہے قرآن میں کہ پیغمبروں نے جب دعوت دی تو اس کے مقابلے میں بے ایمانوں نے پیغمبروں کو یہ بات کہی, ارے تم ایسی باتیں کرتے ہو, تم اپنے تم جو ہمارا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ تو تم ہمارے ملک میں رہ سکتے, اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. کون کہہ رہا ہے, نبیوں کو کہہ رہے ہیں. تو اگر آج والے ہم کون تم کو کہے تو کون سی نئی بات ہے, لیکن آگے کی بات سمجھنی ہے. اللہ کہہ رہے فاوحا الیہم ربہم, اللہ تعالی نے آسمان سے پیغمبروں کو وحی بھیجی. کیا وحی بھیجی, فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین. اللہ کہہ رہے ہم ضرور بھی ضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے, ہم ضرور بھی ضرور, اس لیے کہ جو ہے کفر کے ساتھ ملک چل سکتا ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. کفر کے ساتھ چل سکتا ہے, کفر کی سزا آخرت میں ہوگی اور ظلم کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے اپنے نبی جی کو, انبیاء کو, فاوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین, ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے اور ان کے پیچھے ہم تم کو بسائیں گے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے, وہ سمجھنے کی ہے, آگے ایک بات سمجھائی اور سمجھنے کی ہے. اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت اسی کی ہے کہ یہ دو باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور پوری امت میں دو باتیں پیدا ہو جائے کہ ظالم کو اللہ کب ہلاک کرتا ہے اور اس کی جگہ پر ایمان والوں کو کب جو ہے موقع دیتا ہے. فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید, جن کے دل میں یہ ڈر ہے کہ ہر وقت میرا اللہ میرے سامنے ہے, ایک دن مجھے مرنا ہے, اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے, مجھے اپنا منہ دکھانا ہے, میرے اپنی زندگی کے جو ایک پل پل کا, سانس سانس کا اور میرے پیسے کی پائی پائی کا مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اگر میں نے اس کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری تو وہ عذاب کے کوڑے برسیں گے, اس کا ڈر دل کے اندر ہے. اللہ فرماتے جس کے دل میں یہ بات ہوگی اور جس کی زندگی اس کے مطابق ہوگی, اللہ کہہ رہے ہم تم کو ان کی جگہ بسائیں گے اور ان ظالموں کو ضرور بھی ضرور ہلاک کریں گے. اور اللہ نے کیا ہے ہر زمانے میں, اور قرآن میں بات اللہ نے سمجھائی ہے. چنانچہ ہر نبی اپنی اپنی امت کو سمجھاتے رہے, نبیوں نے بات سمجھائی, اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب ایک بات کہہ رہے ہیں, انہوں نے نہیں مانا تو پھر کیا ہوا. اللہ بڑے رحمان ہیں, اللہ بڑے رحیم ہیں, سب پر مہربانی کرنے والے اور بے حد مہربانی کرنے والے. اسی کے لیے تو اللہ سمجھانے کا نظام چلاتے ہیں, اپنے پیغمبروں کو چلاتے ہیں. اور چونکہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اب قیامت تک انسانوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا, اب ان تک اللہ کی بات کون پہنچائے, تو آپ کے ختم رسالت کے نتیجے میں اور صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری دی. یہ جماعتوں کا نظام کیا ہے, یہ جماعتوں کا نظام کیا ہے, یہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کی دلیل ہے. یہ کوریا بستر اٹھا کر گھر گھر جانا, در در جانا, شہر شہر جانا, ریلوں میں, بسوں میں, ٹرینوں میں, ہوائی جہازوں میں, اور جو ہے جنگلوں میں, پہاڑوں پر, بستیوں میں,
एक एक के घर घर पर जाना, खलियानों में जाना, खेतों में जाना, एक एक के पास में जाकर के ये बात समझाई जाती है, उस अल्लाह को मानो, उस अल्लाह की मानो, उस अल्लाह ही से अपना निजाम कायम करो, उस अल्लाह ही से मांगो जिसके हाथ में दुनिया आखिरत का निजाम है। ये बात जो समझाई जा रही है और ये जो जमाते चल फिर रही है, ये किस बात की दलील है? ये इस बात की दलील है, हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। तो ये नबुवत का काम जो पहले अल्लाह नबियों से लिया करते थे, ये तो हमारी और आपकी सआदत जाग उठी, हमारा भाग जाग उठा, जिसके नतीजे में अल्लाह ने हमसे इतना बड़ा काम ले लिया। ये कोई मामूली सआदत की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह का निजाम ये था, ये जो समझाने के लिए नबियों ने समझाया अपनी अपनी कौम को, अपनी अपनी कौम को समझाया, नहीं माना, अल्लाह कह रहे फिर क्या किया हमने? अल्लाह जब एक हद तक मेहनत करवाते हैं फिर भी नहीं मानते, अल्लाह कह रहे फकुल्लना खजरा भी लंबी ही فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فرمایا جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا، جب انہوں نے ہماری نہیں مانی اور یہ گناہوں پر تلے رہے، نبیوں کو جھٹلایا، ہمارے تعلیمات کو جھٹلایا اور اپنی زندگیوں کو معصیتوں میں جو ہے ڈبا دیا، تو پھر ہم نے ان کے ایک ایک کو پکڑا۔ कैसे पकड़ा, कैसे पकड़ा? उसके पकड़ने के अंदाज निराले है, उनके पकड़ने के अंदाज निराले है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहने लगी, अरे हम तो इतनी बड़ी अक्सरियत में, तुम तो अकलियत में हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? क्या कहने लगे? तुम तो अकलियत में और हम अक्सरियत में। ये किसका नारा था? ये किसका नारा था? ये नारा था नूह अलैहिस्सलाम की कौम का। मुसलमान कितने थे? 80-82 खाली। कितने? 80-82 खाली मुसलमान थे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक काम किया, एक साल, दो साल, 10 साल, 20 साल नहीं, 950 साल तक मेहनत किया। आप अंदाज लगाओ नबी का क्या जर्फ था और कैसे समझाया नूह अलैहिस्सलाम। सूरह नूह में अल्लाह ने इनकी दावत को समझाया है। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह तो मैंने इनको समझाया, कैसे समझाया? दिन में भी समझाया, रात में भी समझाया, एक एक के पास में जाकर के भी समझाया, मेरे कौम जिनके इज्तिमाई तौर पर भी समझाया, दिन में भी समझाया, रात में भी समझाया, मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं है। माने क्या? फरमाया जब मैं इनके पास जाता हूँ, ये अपने चेहरे पर जो है कपड़ा डाल देते हैं कि मेरा चेहरा न देखे, और इतना ही नहीं कानों में जो है रुई और अपने डांट लगा देते हैं कि मेरी मेरी आवाज इनके कान में न पड़े। मैंने उनको मुख्तलिब अंदाज से समझाया, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू काना गफ्फारा, मैंने तेरी नियमतें भी याद दिलाई, मैंने तेरे इनामात भी समझाए। ऐ मेरी कौम, उस अल्लाह को मान लो, उस अल्लाह की मान लो, वो अल्लाह बड़े माफ करने वाले है, तुम्हारे गुनाहों को माफ करके तुम्हारे ऊपर नियमतों के दहाने खोलेगा। इस अंदाज से भी समझाया और इस अंदाज से भी समझाया, अरे इतने बड़े अल्लाह की अजमत का तुम्हारा ख्याल नहीं आ रहा है? मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा वकद खलकतुम अतवारा, अरे इतने बड़े अल्लाह की अजमत का तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा? ये मुख्तलिफ अंदाज से मैंने समझाया, मगर कोई मान के नहीं देता। फरमाया जब अल्लाह की तरफ से 950 साल तक समझाते रहे, फिर अल्लाह की तरफ से बात बताया गया, कोई नहीं मानने वाला। وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، देखो नबी कभी बद्दुआ नहीं करते, बद्दुआ उस वक्त में करते जो ऊपर से इशारा मिलता है। ऊपर से इशारा मिला, फरमाया अब उनमें से कोई ईमान नहीं लाने वाला। अब अल्लाह से कह रहे, अल्लाह अब अगर तू इनको जमीन पर छोड़ेगा तो इनके इन इन बेईमानों के रास्ते से ये जो ईमान लाए उनका ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दियारा, अल्लाह एक भी घर मत छोड़, एक भी घर मत छोड़ना। इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, इनकी नस्लें भी अब तो ऐसी ही पैदा होगी जो दूसरों की गुमराही का सामान बनेंगे। इसलिए ये जो इनका दावा था, हम अक्सरियत में हैं, तुम अकलियत में हो, तुम हमारा क्या बिगाड़ दोगे? अल्लाह कह रहे हमने इनको कैसे पकड़ा? हमने इनको कैसे पकड़ा, हमने ऊपर से पानी बरसाया, जमीन से पानी बरसाया, ऊपर से पानी और नीचे से पानी, फरमाया और अपना इन सबको डुबा दिया। बताओ अगर अल्लाह आसमान से पानी बरसा दे, जमीन से पानी निकाल दे, दुनिया की कोई ताकत है इसका मुकाबला कर सके? क्यों भाई, कोई ताकत है? हमारे यहाँ बम्बई में कुछ सालों पहले खाली 4 घंटा बारिश हुई थी, 4 घंटा, 4 या 5 घंटा, उसके नतीजे में पूरा निजाम तिहस नहस हो गया, पूरा निजाम खाली 4 घंटे के पानी की वजह से। ये तो अल्लाह रहीम है, रहमान है, जिसके नतीजे में दुनिया का निजाम राम की बुनियाद पर चला रहा है। वरना आज हमने अपने अमल भी आसमान पर ऐसे भेजे हैं जिसमें हमारी हलाकत का सामान है, और आज इंसानों ने भी वो सामान तैयार कर रखे हैं इंसानों के हलाकत के। अगर कोई दीवाना और कोई पागल जाकर के अगर कुछ दबा दे जिसके नतीजे में पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है, पर मैं जमीन पर इंसानों ने ऐसे सामान तैयार किए हैं जिससे इंसानियत हलाक हो, और यहाँ से आसमान पर हमने अमल भी ऐसे भेजे हैं जिसके नतीजे में हलाकत के सामान है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कायनात का निजाम चला रहा है। इसलिए फरमाया कैसे अल्लाह किया, पानी के जरिए से। बताओ पूरी दुनिया के इंसानों की ताकत है साइंसदानों की, और जो बड़ी बड़ी डेंगे मार रहे हैं पर मैं उनके बस में है इसका मुकाबला कर सके? वही डेंगे मार रहे थे, अल्लाह ने इनको तहस नहस किया। वो कौमे आज जिनको नबी ने समझाया अरे उसकी ताकत मानो, उसकी कुदरत समझो, वो कहने लगे मन अशद्दु मिन्ना कुवा, उन्हें अपनी ताकत का घमंड आ गया, बड़े बोल बोल लिए, अरे हमसे बड़ा ताकत वाला कौन। इतनी ताकत अल्लाह ने उनको दी थी, उनके जुस्से थे 90 फुट के, उनके हाथों में वो ताकत दी थी अल्लाह ने जो आज किसी भी बड़े से बड़ा दरख्त होता है यूं उखेड़ लेता है। फरमाया ये उस तरीके दरख्त को उखेड़ लेते थे और पहाड़ों में मकान बना लेते थे, इतनी अल्लाह ने ताकत दी थी। अल्लाह कुरान में के लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, उस जैसा हमने जमीन पर पैदा नहीं किया, ये किसने ताकत दी थी अल्लाह ने? नबी ने समझाया, वो बड़े बोल बोल लिए कि हमसे ज्यादा ताकत वाला कौन। नबी ने समझाया अरे कुछ तो सोचो, जिस अल्लाह ने तुमको ताकत दी है वो अल्लाह कितनी बड़ी ताकत वाला होगा, वो अल्लाह कितनी बड़ी ताकत वाला होगा। नहीं समझ में आया, वो समझे होंगे कि वहां तो पानी का अजाब आया था, हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तो हमारी हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह ने क्या भेजा वहां, हवा चलाई, हवा अरसलना फमा सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى। फरमाया अल्लाह ने हवा चलाई जिसके नतीजे में लंबे तरंगे ये इस तरह गिरे हुए थे, कुरान मंजर कशी कर रहा है जैसे खजूर के तने पड़े हुए हो, और कुरान कह रहा है फल तरा लहू मिन बाकी, बता उनमें से एक भी बचाए, बता एक भी बचाए। कही अल्लाह ने फरिश्ते की चीख भेजी, ओमे समूद जो हिना सनातो हिरफत टेक्नोलॉजी का नशा था, सनातो हिरफत का, जैसे आज के जमाने में नशे है, पर मैं सनातो हिरफत का नशा था, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है। अल्लाह ने फरिश्ते की चीख के जरिए से और जलजले के जरिए से इनको हलाक कर दिया। बताओ अगर फरिश्ता चीख मारे किसी के भले कलेजे सलामत रह सकते हैं, अगर थोड़ी सी आवाज आ जाए सबके कलेजे जो है ऊंचे नीचे हो जाते हैं, फरिश्ते की चीख पर सब जो है ना जमीन पर ढेर हो गए। अल्लाह ने जमीन को हिला दिया, जमीन को, बताओ अगर जमीन को अल्लाह हिला दे किसी की ताकत है कि जमीन को रोक सके? कोई नहीं रोक सकता। ये एक ही आयत में अल्लाह ने 4 एटम बम बयान किए हैं कि हमने इनको तेज और तून हवा के जरिए से, पानी के जरिए से, फरिश्ते की चीख के जरिए से और जलजले के जरिए से हमने इनको हलाक किया। और अल्लाह कह रहे हैं हम जुल्म नहीं करते, ये खुद ही जुल्म करने वाले थे, उन्होंने अपनी जातों पर जुल्म किया जिसके नतीजे में हमने इनको उतारा। और फिर साथ में अल्लाह समझा रहे हैं ए दुनिया के बसने वाले इंसानों, तुम्हें जो कुछ नजर आ रहा है, तुम्हें जो ताकतें नजर आ रही है, तुम्हें जो ताकतें नजर आ रही है, ये सब का सब, और जिसने जहां से अपनी उम्मीदें लगाई हुई है, अल्लाह के अलावा जिसने जहां से उम्मीदें लगाई हुई है, ये हमारा सदर है, ये हमारा वजीर है, ये हमारा बड़ा है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा, और हमारे इबादत ये सामान है, वो सामान है, जिन्होंने जहां से उम्मीदें लगाई हुई है, अल्लाह कह रहे हैं मसलुल लदीना तखजू मिन दुनिल्लाहि औलिया कमसल अंकबूत, फरमा इन सब की मिसाल ऐसी है जैसे मकड़ी और मकड़ी के जाले, मकड़ी और मकड़ी के जाले, फरमाए जो जीरू है, जो रूह वाले हैं, जिनसे उम्मीदें लगाए हुए हैं, फरमाए सब मकड़े हैं, मकड़े और मकड़ियां हैं, और जितने इनके सामान हैं, चाहे कितने ही बड़े सामान क्यों ना हो, कुरान कह रहा है ये सब जो है मकड़ी के जाले हैं, मकड़ी के जाले से ज्यादा इसकी हैसियत नहीं है, अल्लाह की ताकत के मुकाबले में जितनी ताकतें हो सकती है वो सारी की सारी ताकतें मकड़ी के जाले से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है, और जितने जो है उदक रहे हैं और जो है इधर उधर जो है डंगे मार रहे हैं, ये सब मकड़े और मकड़ी से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। और भाई हम सब जानते हैं कि मकड़े और मकड़िया ये जाले कहाँ बुनते हैं भाई, कहाँ जाले बुनते भाई, जो घर वीरान हो जाता है ना, वीरान, वहां अपने जाले बुनते, जिस घर के रहने वाले इतने जो है सुस्त हो जाए कि घर की सफाई भी ना करे, तो फिर क्या होता है, वहां मकड़े और मकड़िया जाले बुनना शुरू करते हैं। ऐसे ही समझे हम, ये घर अल्लाह का है, ये जमीन अल्लाह की बनाई हुई है, ये जमीन का असल वेवाशी और खलीफा ये ईमान वाला है, इसके जिम्मे था अपने घर की सफाई करते रहना, लेकिन घर की सफाई में सुस्त पड़ गया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, फरमाया मकड़े और मकड़ियों ने जाले तन लिए, लेकिन उसकी हैसियत क्या है, जिस दिन घर का मालिक झाड़ू लेता है तो झाड़ू लेते ही एक फेरा यू तो क्या हुआ भाई, फरमाया एक जाला साफ, दूसरा फेरा, दूसरी बाजू का जाला साफ। ऐसे ही फरमाया ईमान वाले, अगर ये घर को साफ करने में लग जाए, मूसा अलैह सलाम अपनी कौम को समझा रहे हैं, अपनी कौम बनी इसराइल को समझा रहे हैं, अले उस अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम करो और नमाज कायम करो, मूसा अलैह सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को दो बार समझा रहे हैं, एक अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम करो, दूसरा अगर तुम्हें फिरौन नमाज नहीं पढ़ने देता, पकड़ धकड़ करता है, तो कोई बात नहीं है, घर में नमाज कायम करो, अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, एतिमाद करो, तवक्कुल करो, भरोसा करो, काम बनाने वाली जात अल्लाह की है, उसी के हाथ में दुनिया आखिरत के बाग डोर है, सब की पेशानियां उसके कब्जे में है, सब उसकी मुट्ठी में है, उसके ऊपर तवक्कुल करो, और दूसरा अपनी नमाज को जानदार बनाओ, फरमाया आगे का काम अल्लाह करेंगे। एक तरफ यहाँ दावत हो रही है बनी इसराइल में, दूसरी तरफ फिरौन को समझाया जा रहा है कि देख उस अल्लाह को मान, उस अल्लाह की मान, एक तरफ उस पर मेहनत हो रही है, दूसरी तरफ बनी इसराइल में मेहनत हो रही है। फिर क्या हुआ, दावत एक सतह पर पहुंची, पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने अब जो है घर की सफाई का इरादा किया, एक झाड़ू मारा तो हमान का जाला साफ हो गया, दूसरा झाड़ू मारा तो फिरौन का जाला साफ हो गया, बात आ रही समझ में, लेकिन ये कब होगा। फरमाया मुर्गी का अंडा होता है ना, मुर्गी का अंडा, उसका छिलका कितना कमजोर, अंदर जान पड़ी, जान पड़ने के बाद छिलका अपने आप टूट जाता है, शर्त ये है कि अंदर जान पड़नी चाहिए, जान न पड़े तो छिलका नहीं छूटता। ऐसे ही ईमान वालों के दिल में अल्लाह का ताल्लुक बना, अल्लाह के ताल्लुक की जान बनी, अल्लाह की मोहब्बत की जान बनी, अल्लाह के डर की जान बनी, यकीन की जान बनी, खुशू खुजू वाली नमाज की जान बनी, खशियत वाले इल्म की जान बनी, अल्लाह के ध्यान वाले जिक्र की जान बनी, वो मोहब्बत भरी लज्जत वाली तिलावत की जान बनी, वो मुनाजात की लज्जत वाली जान बनी, अखलाक अजीमा एक दूसरे के लिए अपनी जान और माल से कुर्बानी देने की जान बनी, अल्लाह को राजी करना जन्नत के शौक के जज्बे की जान बनी, इंसानियत के दर्द और गम की जान बनी। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इसके सफाई का इरादा फरमा लेगा। बात आ रही समझ भाई, ये काहे की मेहनत है? ये काहे की मेहनत है? मेरे और आपके अंदर जान पड़ जाए, मेरे और आपके अंदर जान पड़ जाए, इसके लिए मेरे भाइयों, जिस अल्लाह को हमने अपना रब माना है वो अल्लाह बहुत बड़े है, उस अल्लाह को अपने साथ लेना, उस अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम करना, मेरा भी अल्लाह से वो ताल्लुक पैदा हो जाए, आपका भी हो जाए, मेरी बीवी का हो जाए, मेरे बच्चों का हो जाए, और इसी तरीके से मेरे भाई बहनों का हो जाए, मेरे रिश्तेदारों का हो जाए, और मेरे मुल्क वालों का हो जाए, दुनिया में बसने वाले एक एक इंसान का उससे ताल्लुक हो जाए। ये नबी का दर्द होता था, ये नबी का गम होता था, ये नबी की फितर होती थी, रात और दिन का ये फितर होती थी, हर एक का अल्लाह से ताल्लुक पैदा हो जाए। हमारी ये जो मेहनत है वो भी उसी की है। अब इतने बड़े अल्लाह हमारे साथ हो जाए, उसके लिए क्या रास्ता? मन कान लिल्लाही कान अल्लाहु लहू, जो उसका हो गया अल्लाह उसका हो गया। बस खाली अभी कितना करना पड़ेगा भाई? हम अल्लाह के हो जाए, बस क्या करना है? हम अल्लाह के हो जाए तो फिर अल्लाह हमारा हो गया। और जिसका अल्लाह उसका सब, जिसका रब उसका सब, जिसका रब नहीं उसका कुछ भी नहीं है। अब अल्लाह के होने का क्या माना? खाली एक काम करना, बस कितना? एक ही काम। अल्लाह मेरे लिए भी आसान फरमाए और आपके लिए आसान। क्या काम है वो? मन चाही को छोड़ना, रब चाही पर चलना। कितना करना? याद रहेगी बात, अल्लाह मेरे और आपके दिल में उतार दे। कितना करना? मन चाही छोड़ना, रब चाही पर छोड़ चलना। अल्लाह कह रहे हैं बस खाली तू एक काम दुनिया में कर ले कि अपनी जी चाही को छोड़ और रब चाही पर आ जा। मन मानी छोड़ दे, रब चाही पर आ जा, फिर मैं तेरी जितनी चाहते है वो तेरी सारी चाहते पूरी कर। खाली इतना कर दे। दुनिया में आदमी आता है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। अल्लाह की मर्जी से आया है, अल्लाह की मर्जी से जाएगा। बाद मर्तबा आदमी मरने के लिए कोशिश करता है और अल्लाह ने इरादा, अल्लाह की चाहत नहीं तो मर भी नहीं सकता। एक आदमी चौथे मंजिले से इस नियत से गिरा कि मैं मर जाऊं, वो नहीं मरा, जिसके ऊपर गिरा वो मर गया। बात आ रही है? जिसको मरना था वो नहीं मरा और जिसको नहीं मरना तो वो मर गया। तो मरना भी आदमी के हाथ में नहीं है, वो भी अल्लाह के हाथ में। तो आदमी अपनी मर्जी से दुनिया में आया नहीं, अपनी मर्जी से दुनिया से जाएगा नहीं। अब अल्लाह कह रहे भाई, हे मेरे बंदे, तू अपनी मर्जी से आया नहीं, अपनी मर्जी से जाएगा नहीं, बस ये दरमियान का जो थोड़ा सा जमाना है ना, पास 50 साल का 60 साल का खाली इसमें तू अपनी मर्जी छोड़ दे। मैंने रखी है दो रास्ते रखे, तू चाहेगा तेरी मर्जी से भी चल लेगा, तेरी जिंदगी गुजर जाएगी, और चाहेगा मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा तो भी तेरी जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मौत ही के साथ में तेरा अंजाम अलग अलग हो जाएगा। अगर तू अपनी मर्जी चल के आया है फिर वो मुसीबतों के पहाड़ होंगे, तू आंसू रोए से तू रोएगा, इतना रोएगा कि रोते रोते तेरे आंसुओं में कश्तियां चला दी जाए, पर तेरी सुनवाई नहीं होगी, तेरे लिए नजात का कोई सामान नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि आदमी के मौत के बाद दो ही ठिकाने हैं, तीसरा कोई नहीं, या उसके लिए जन्नत है या उसके लिए जहन्नम है। अगर मर्जी वाली जिंदगी गुजार के आया तो ये मरते उसके लिए जहन्नम है, और तू अगर मेरी मर्जी चल के आया तो फिर तेरे लिए वारे के नियारे, वारे के नियारे। मरने के साथ तेरे लिए जन्नत में मैंने वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन, फरमाया जो तेरी मर्जी होगी, जो तेरी चाहत होगी वो मैं तेरी पूरी कराऊंगा। कैसी जन्नत, जहां की एक ईंट सोने की, चांदी की, जुमरुद की, याकूत की मिलाने के लिए गारा मुश्क का, वहां की मिट्टी जाफरान की, कंकर मोतियों के, यहाँ दूध की, पानी की, शहद की, शराब की नहरें है, पहनने के लिए दबीज के, रेशम के लिबास है, और खाने के लिए वफा किया कि मिम्मा यतखय्यरून वलहम तैर मिम्मा यश्तहून, फरमाया जौन से परिंदे का गोश्त खाने को दिल चाहे परिंदा उड़ता हुआ आएगा सुबहानकल्लाहुम्मा, और परिंदा उड़ के आएगा और परिंदे यूं कहेंगे, एक कहेगा मुझे खा लो, दूसरा कहेगा मुझे खा लो, समंदर में सफर कर रहे हैं, समंदर क्या होगा, एक जहान होगा, एक जहान, जिसने सवार जिस सफर करेगा समंदरी सवारियों से इतनी तेज रफ्तार चलेगी, जहां तक जन्नती की नजर दौड़े हमें उतनी तेज रफ्तारी से सवारी दौड़ेगी, जन समंदर के सफर में जा रहा है और सवारी पर सवार है, मछली अपना मुंह निकालेगी, या वली अल्लाह अता कुलनी, अरे अल्लाह के दोस्त क्या तुम हमें खाओगे, तो बन कहेगा हाँ, तो पूछेगी कैसा खाओगे, मछलियन मतबूखन, क्या भुनी हुई खाओगे, तली हुई खाओगे, या शोरबे वाली खाओगे, कैसा जन्नती का जो दिल होगा वो अपनी पुश्त यूं ऊपर कर लेगी और जन्नती उससे लुत्फ अंदोज होगा। इसी तरीके से फरमाया वफा के हकीम मीमा या तखय्यरून, जो उनसे मेवे का दिल खाने को चाहे फरमाया टहनी झुक जाएगी, इसने फल तोड़ा उसको काश करेगा, जितने हिस्से करेगा हर हिस्से का अलग मजा, दुनिया की तरह नहीं कि एक हिस्से काटता है सबका मजा एक तरीके का, वहां ऐसा नहीं होगा, जितने काश हर काश का अलग अलग मजा। सोने के तारों से जड़े हुए तख्त होंगे, गद्दे और इसी तरीके से ऊंचे ऊंचे फर्श तकिए लगे होंगे, आमने सामने बैठ करके जो है बातें करेंगे कि हम जो है खुला इज्तिमा में बैठ कर दीन की बात सुनाएंगे। आज आरी समय भाई, और पहनने के लिए दबीज के रेशम के लिबास वो, और ऐसा खूबसूरत अल्लाह चेहरा था फरमाएंगे, फरमाया 1000 साल की मसाफत की दूरी पर होगा और इसका चेहरा चमक रहा होगा, एक जरूरत इंसान की औरत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हूर को बनाया है का अम्साल लुलुल मकनून, जैसे छुपे हुए मोती होते हैं, तुम देखोगे कि मोती है और इसके ऊपर ना कोई गर्द गुबार है, और कैसा इसके बाल कैसे होंगे, इसका जो है फूला कैसा होगा, इसके दिल में जन्नती की जो मोहब्बत है वो भी नजर आएगी, वो भी अंदर नजर आएगी, दुनिया की तरह नहीं, जबान से आओ आओ, अंदर से जाओ। दुनिया में क्या होता है बाल बच्चा, ऊपर से आओ आओ, अंदर से जाओ। पर मैं जन्नती की जो मोहब्बत होगी, मोहब्बत वो मोहब्बत उसके दिल में नजर आएगी, इसकी उसके पिंडली का गूदा तक नजर आएगा, गूदा तक, और मुश्क अंबर और ज़ाफ़रान से बनी है, मिट्टी से नहीं बनी। दुनिया की औरत ये हूर तीर है, मिट्टी की हूर है, वहां की हूर हूर ईन है, वहां की हूर ईन है। फरमाया अगर वो अपना दोपट्टा आसमान और जमीन के दरमियान में लहरा दे, सातु जमीन और आसमान मुअत्तर हो जाए, और सातु जमीन और आसमान रोशन हो जाए, सूरज की रोशनी मान पड़ जाए, वरना दो पट्टा इतना कीमती होगा, उसका लिबास कितना कीमती होगा। ये तो मैंने खाली थोड़ी सी झलक बताई, थोड़ी सी झलक, कुरान भरा हुआ है, अल्लाह के नबी का कलाम भरा हुआ है। एक मर्तबा एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी जन्नत का तज़किरा कर रहे, शहरी सहाबा की तमन्ना होती थी कोई देहाती सहाबी आ जाए और जन्नत का जरा सवालात करे, क्योंकि रौब रहता था अल्लाह के नबी का, शहरी सहाबा जो हर वक्त साथ रहते थे तो एक रौब होता था, इसकी वजह से बहुत सोच समझ कर सवालात करते, तो सोचते थे देहाती सहाबी आ जाए, एक देहाती सहाबी आ गए, फौरन आते ही पूछा अल्लाह जन्नत का तज़किरा हो रहा था, अल्लाह के नबी जन्नत में दरख्त है, दरख्त बिहार के रहने वाले थे तो बिहार का टेस्ट है, जरा लिमड़ा हो
और वहां खटिया डाला हो, बिहार का खेल थे, तो सहाबी कहने लगे अरे जन्नत में दरख्त अल्लाह के रसूल बोला हाँ हाँ है। बोले एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है, एक दरख्त है जिसका नाम तूबा है। तो फिर वो पूछने लगे अच्छा यहाँ कहीं है ताकि हमको देख के पता चले, जैसे अंगूर है, सेब है, संतरा है, जन्नत में मिलेगा कम से कम पता तो चले कि ऐसा होता है। तो अल्लाह के नबी नहीं यहाँ तो नहीं है, बता शाम में। फिर वो सहाबी पूछने लगे अच्छा अल्लाह के नबी उसका तना कितना बड़ा होगा, उसको थड़ी तो चुटू मोटू से। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जवान उठनी उसके इर्द गिर्द चलना शुरू करे, चलते चलते बूढ़ी होकर खत्म हो जाए लेकिन उसका तना पार नहीं कर सकता। फिर वो सहाबी पूछने लगे अल्लाह के नबी जन्नत में अंगूर है अंगूर? अल्लाह के नबी फरमाया हाँ है। फिर पूछा अल्लाह के नबी उसका गुच्छा कितना बड़ा होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कौवा जो बहुत तेज चलता है, न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, एक महीना उड़ता रहे उड़ता रहे उड़ता रहे तब जाकर के उसका गुच्छा पूरा होगा। फिर वो साहब पूछेगा अच्छा अल्लाह के नबी दाना कितना बड़ा होगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे बाप ने कभी बकरा जिबा किया है? बोले हाँ किया है। फरमाया इतना बड़ा दाना होगा? वो सारी कहने लगे बस बस फिर तो फिर मेरे घराने के लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरे घराने के लिए पूरे खानदान के लिए काफी, पूरे खानदान के लिए काफी। तो बहरहाल ये शौक की चीज है मेरे भाई, दुनिया खत्म होने के लिए है, दुनिया को अल्लाह कहीं कह रहे हैं मकड़ी का जाला, कहीं अल्लाह कह रहे खेल कूद खेल कूद, कहीं कह रहे धोखे का सामान है, कहीं कुरान कह रहे अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, अरे दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं दुनिया की ऐसे ख्वाब से ज्यादा है, ख्वाब जैसी है ख्वाब जैसी, जैसे ख्वाब में एक आदमी देखे, ख्वाब देख रहा है, इसलिए ख्वाब पर तो आदमी का इख्तियार नहीं है ना, तो ख्वाब देख रहा है क्या देख रहा है, मैं तो मुल्क का सदर हूँ और चारों तरफ हशम कदम है और दुनिया की जितनी बैंक है उसमें मेरी बैलेंस है और बाहर गए कई गाड़ियां कीमती से कीमती ड्राइवर के साथ में खड़ी है, जोन सी गाड़ी में जाऊं चाहूं बैठ जाऊं, ये ख्वाब में देख रहा है। सुबह के वक्त बीवी ने अंगूठा हिलाया, अरे उठो आज तो म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं आया, बस्ती वालों ने झंडा करके टैंकर मंगाया है, जाओ जल्दी से हंडा भर के आओ, ये बच्चों को मदरसे में जाने में देर हो रही है। ओ, ओ, ये उठा और उठ करके देख रहा है जो अभी क्या था और अभी क्या है, वो धोखा था, ये हकीकत वो धोखा था, जो थोड़ी दूर देखता है तो वही 10x10 की खोली है, बदन पर जाने में एक लुंगी बंदी वही है और जो है ऊपर हाथ करे तो छत पर लग जाए, पैर लंबा करे तो दीवार पर टच हो जाए। अब समझ रहा है नहीं नहीं थोड़ी देर पहले जो मैं देख रहा था वो हकीकत नहीं थी, वो तो धोखा था, धोखा ये जो मैं बेदारी की हालत में देख रहा हूँ। ऐसे ही एक आदमी ख्वाब में देख रहा है, परेशानियों में है, उलझनों में है, मुसीबतों में है, बीमारियों में है, दुख दर्द में है, ऐसा ख्वाब में देख रहा है लेकिन क्या देखता है, सुबह बीवी ने अंगूठा हिलाया अरे उठो, और क्या देखता है कि आलीशान महल भी है और चारों तरफ हशम कदम भी है और उसके लिए सारे आसाइश के नक्शे है, वो समझता है थोड़ी देर पहले मैं जो देख रहा था वो हकीकत नहीं थी, हकीकत यह है वो धोखा था। ऐसे ही मेरे भाइयों फरमा आज दुनिया में जो कुछ नजर आ रहा है कुरान कह रहा है धोखा है धोखा, धोखा है धोखा, और ये धोखा कब खुलेगा? फरमा मौत, धोखा दो जगह खुलता है, दो जगह धोखा खुलता है, एक मौत के वक्त में फकशफना अनका गिताका फबसरुकल यौम हरीम, और आंखों पर जो दुनिया का पर्दा पड़ा हुआ है जिससे दुनिया दिखाई दे रही है आखिरत नहीं दिखाई दे रही है, अल्लाह कहते हैं अब वो पर्दा तुम्हारे ऊपर से हटा देंगे, अब हटा दिया, पास में बीवी खड़ी है, पास में बाप खड़ा है और दुनिया इतनी बड़ी नजर आ रही थी, अब वो नजर आना बंद हो गया, अब आखिरत नजर आ रही है, फकशफना अनका गिताका फबसरुकल यौम हदीद, अब यहाँ तेरे साथ क्या मामला है? फरमाया ये हकीकत है, वो जो पहले देख रहा था वो धोखा था। बात आई समझ? इसलिए अल्लाह कुरान में जगह जगह कह रहे हैं ला यगुर्रन्नका तकल्लुबुल लदीना कफरू फिल बिलाद, ए नबी जी अल्लाह अपने नबी जी से कह रहे हैं और नबी जी के रास्ते से मुझे और आपको अल्लाह सुना रहे हैं, जैसे घर में होता है घर में सुनाना होता है बहू को, लेकिन खुसर कहता है अपनी बीवी को, तो कहता किसको है अपनी यानी सास को, उसकी सास को, और सुनाना किसको होता है? ऐसे ही बिला तशबी और बिला मिसाल तकरीब इरल फहम के अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं अपने नबी जी को, लेकिन अपना अल्लाह के नबी का तो क्या मकाम है। अल्लाह ने सबको कहा तुम मुझे राजी करो, लेकिन अल्लाह अपने नबी जी से कह रहे हैं, अरे नबी जी मुझे तो तुम्हें इतना देना है कि तुम राजी हो जाओ, भले सौ फयौती का रब्बू का फतल हुआ। लेकिन अल्लाह अपने नबी जी के रास्ते से मुझे और आपको समझा रहे हैं, ये दुनिया की चहल पहल को देखकर तुम्हें धोखे में मत आना। या अय्युह अन्नास इन वअदल्लाहु हक फला तगुरन्नकुम अलहयातुद दुनिया वला यगुरन्नकुम बिललाहिल गुरूर। ए दुनिया के बस्ती वाले इंसानों, ये दुनिया तुमको धोखा न दे, और धोखाबाज शैतान तुमको धोखा न दे। पिछली कई कौमों को इन्होंने धोखा दिया है, इसलिए अल्लाह ने पिछली कौमों के वाकया सुनाए हैं, ये दुनिया तुमको धोखा न दे। फरमाया मौत के वक्त में तो धोखा खुलता है, सबके सामने धोखे खुले, फिरौन के सामने धोखा खुला, फिरौन जो खुदाई का दावा कर रहा था, जब यहाँ आई चांद, जब यहाँ आई उसकी रूह, वो आखिरत का पर्दा खुलने लगा। अब कहता है हत्ता इज़ा अदरकहु अल-ग़र्क قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين। अजी मैं ईमान लाया बनु इसराइल के रब पर और मैं पक्का मुसलमान होता हूँ। अल्लाह ताला कह रहे आल आन वक़द आसैत क़ब्लु व कुंत मिन अल मुफ्सिदीन। अब ईमान लाता है, पहले तो डेंगे मार रहा था, और उस वक्त का ईमान मोतबर नहीं है। तो एक तो मौका वो है जो मौत के वक्त में सबके ऊपर से धोखे खुलेंगे, और एक मेरे भाइयों ये मौका है ये अल्लाह के रास्ते में निकलकर ईमान के तस्करे, जन्नत के तस्करे, नबी के तस्करे, अखलाक के तस्करे, आमाल के तस्करे, जन्नत और नियमतों के तस्करे, जहन्नम उसके अजाब के तस्करे, ये जितना इसको बार बार बोला जाएगा बार बार, और जितना इसको सुनेंगे इसके रास्ते से दिलों में ये बात उतरेगी। इसलिए कि दिल में जो बात उतरती है उसके उतारने के यही चार रास्ते हैं। इसी को देखना ईमान की नजर से, इसको दिल में उतारना सुनने के रास्ते से, इसको बोलने के रास्ते से, और इसको सोचना आखिरत को, जन्नत को, जन्नत की नियामतों को, मौत के बाद को। और भाई आखिरत की जिंदगी कोई दूर, आखिरत कोई दूर नहीं है, वो बहुत नजदीक है। إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا। अल्लाह कहते हैं कि तुम उसको दूर समझ रहे हो, दूर नहीं है, वो तो बहुत नजदीक है। हर आदमी की आखिरत और हर आदमी की क़यामत वो तो मौत से शुरू हो जाती है, इसलिए अल्लाह ने मौत को अजीब अंदाज से समझाया है। فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ। कहीं ये फरमाया, कहीं फरमाया كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَلْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ। क्या अजीब अंदाज से अल्लाह मुझे और आपको समझा रहे हैं, तुम आखिरत को दूर समझ रहे हो, तुम कयामत को दूर समझ रहे हो। अरे कयामत तो मौत से शुरू हो जाएगी। मन मात फकद कामत कयामतुहु, जिसकी मौत आ गई उसकी तो कयामत शुरू हो गई, और मौत तो हर एक के ऊपर आ रही है, क्या तुम देखते नहीं हो? अल्लाह समझा रहे हैं जब किसी की मौत आती है तो उसकी जान, जब उसकी रूह या हसली में आकर फंसती है, तो और जब इलाज मुआलजा से नाउमीदी हो जाती है, आखिर में आदमी सहारा लेता है, अरे पानी दम करके लाओ, अरे ये करके लाओ, क्योंकि जिंदगी बच जाए। अल्लाह ताला कह रहे वकील मंदरा, घर वाले कहते अरे दम करो, इसके ऊपर दम करो, लेकिन वो समझ जाता है जो जाने वाला होता है। وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, ये जिसके ऊपर बीत रही है वो जान रहा है अब मेरे से दुनिया छूट रही है, माँ बाप छूट रहे हैं, रूह बदन से अलाइदा हो रही है। وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ। अब क्या होता है, हमें रूह पाँव से निकलना शुरू होती है, जिसके नतीजे में अब पाँव पर से अपना कंट्रोल खत्म हो रहा है, एक पाँव दूसरे पाँव पर चढ़ रहा है। وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ इला रब्बिका यौमा इदिनिल मसाब। अब जो है यहाँ से निकल के अल्लाह के फिर वो इला रब्बी का, अब ये रूह को तेरे रब के पास में जाना है, तेरे रब के पास में जाना है। अब तू किस हाल में जा रहा है? फरमाया अगर इस हाल में जा रहा है, न कलमा है न नमाज है, बल्कि ऊपर से कलमे को झुटलाया, नमाज से मुंह मोड़ा, घर में अटकता हुआ रहा, ये इस हाल में गया, तो फिर क्या मंजिल, उसका मंजर अलग है। इसलिए फरमाया वो ये न समझे अयहसबुल इंसानु अयुतरकु सुदा, वो इंसान ये समझता है कि मरने के बाद मुझसे कोई पूछ नहीं होगी, खुले मुहार मुझे छोड़ दिया जाएगा, मेरी कोई पूछताछ नहीं होगी। नहीं नहीं, जिस अल्लाह ने तुझको दुनिया में पैदा किया था वो अल्लाह तुझे दोबारा पैदा करेगा, और पैदा करने के बाद अपने सामने खड़ा करके पूछेगा, मैंने तुझे जिंदगी दी थी उसको कहाँ लगाया, मैंने तुझे जो है जवानी दी थी उसको कहाँ लगाया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, जो जानता था उस पर कैसे क्या अमल किया। और वहां पर फरमाया ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये आसमान लपेट दिया जाएगा, जमीन बदल दी जाएगी, और पहाड़ रुई के गालू की तरह उड़ने लगेंगे, समंदरों में आग लग जाएगी, समंदर खुश्क हो जाएंगे, और एक सूर फूका जाएगा जिससे सारे इंसान खत्म हो जाएंगे, सारे इंसान मर जाएंगे, फरिश्ते मर जाएंगे, और फिर उसके बाद में कोई नहीं रहेगा। अल्लाह सदा लगाएंगे, अल्लाह सदा लगाएंगे लिमनिल मुल्क यौम, बताओ आज बादशाहत किसकी है? सब कहते थे मेरा मुल्क मेरा मुल्क, मेरी प्रॉपर्टी मेरा घर मेरा मेरा मेरा। अल्लाह कहेंगे अइनल मुल्क, कहाँ चले गए जिनको दावा था अपने मुल्क का, जो अकड़ते थे जो मकड़ मकड़ करते थे, कोई नहीं होगा बोलने वाले, कौन बोले? उस वक्त में अल्लाह कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदुल कहार, अब एक तने तना अल्लाह की बादशाहत है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? अल्लाह आसमान से पानी बरसाएंगे, जिस तरह जमीन से सब्जा उगाता है तरकारी उगाती है, इस तरीके से जितनी दुनिया में हजरत आदम अलैहि सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक में इंसान आए है और ये जमीन में गए है, उनकी रूहें महफूज है, इनका जिस्म अब बनना शुरू हो जाएगा। जैसे गुठली जमीन में दफन होती है, जैसी गुठली जोनसा जो है, अगर हाफूस की गुठली है हाफूस का दर्द तैयार हो जाता है, अगर चौसे का गुठली है चौसा तैयार हो जाता है, ऐसे ही हर आदमी के रीढ़ में एक हड्डी है, छोटा सा दाना है, इंसान पूरा उसकी जमीन खा जाती है, लेकिन वो दाना महफूज रहता है, अल्लाह आसमान से पानी बरसाएगा और ये दाने से पूरा इंसान तैयार हो जाएगा, पूरा इंसान तैयार हो जाएगा। इसलिए अल्लाह कह रहे हैं अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, इंसान समझता है हमारी हड्डियां जो जमीन में गल गई सड़ गई मिल गई मिट्टी में, उसको कौन जिंदा करेगा? अल्लाह कह रहे हैं बला क़ादिरीन अला अन युसव्विय बनाना, क्यों नहीं तेरे ये पोर्वे है ना, ये पोर्वे भी मैं तुझे ला करके दिखा दूंगा क़यामत के मैदान। इसलिए मेरे भाइयों फरमाया फिर ये कयामत का मैदान है, हर आदमी के सामने आने वाला है। अकलमंद आदमी होशियार आदमी समझदार आदमी वो है कि मौत के आने से पहले पहले उसकी तैयारी कर ले, और ये मौका है ये धोखा के खुलने का उसकी तैयारी का, इसके लिए हिम्मत करके ये तैयारी के लिए। देखो ये आज हम लोग ये समझते हैं कि भाई हमेशा के लिए हमें अल्लाह के रास्ते में निकलना है जो रहना है, नहीं, ये तो सीखने के लिए है। चार महीना अल्लाह के रास्ते में सीख जा करके सीखना है, एक मरतबा अच्छी तरह चार महीना लगा दे, अमीर के इताअत, मस्जिद की चार दीवारी, इनफिरादी इज्तिमाई आमाल की पाबंदी, साथियों में आजीज़ी इंकिसारी, छह नंबर की लगाम, बचने की चीजों से बचना, करने के कामों को करना, दीन में मखलूक पर मेहनत करते हुए, खालिक पर मेहनत करते हुए, रात में जब ये इस तरीके से मेहनत करेंगे चार महीना 120 दिन लगाएंगे, अल्लाह ने इसमें वो तासीर रखी है, अल्लाह दिल का रुख मखलूक से खालिक की तरफ, माल से अमाल की तरफ, दुनिया से आखिरत की तरफ कर देंगे, किसी न किसी दर्जे में अल्लाह ताला दावत की फिक्र अता फरमाएंगे, फिर उसके बाद आदमी घर पर आ जाए, घर पर रहते हुए अपने कारोबार को हलाल तरीके से जायज नाजायज की रियायत करते हुए, अपने बीवी बच्चों की दीनी जरूरत को और दुनियावी जो है नफकात का लिहाज रखते हुए, दावत को नंबर एक पर, दीन को नंबर एक पर रखते हुए, दुनियावी तकाजों को नंबर दो पर रखते हुए ये जिंदगी गुजारता रहेगा, इसका हर कदम उसको अल्लाह से करीब, हर कदम उसको अल्लाह से करीब करेगा। देखो दुनिया छुड़ाई नहीं जाती, दुनिया मना नहीं किया जाता, खाली एक बात कही जा रही है भाई सीख के काम, सीख
के करो हम तिजारत कर रहे हैं दीन और दीन की मेहनत को नंबर एक पर रखे दुनिया के तकाजों को नंबर दो पर रखे बस खाली इतना करना है आज दुनिया और दुनिया के तकाजे नंबर एक पर है दीन और दीन के तकाजे नंबर दो पर है या एक के उसका खाता ही नहीं है ये दावत में निकल कर इस बात की मेहनत है और भाई अल्लाह के नाम पर अपनी जान और माल को जब लगाया जाएगा अल्लाह इसके रास्ते से हमारी अपनी औलाद में अपने मालों में अपने औकात में अपनी जिंदगियों में अल्लाह बरकतों के दहाने खोलेंगे ये तो अल्लाह से लेने का रास्ता है और भाइयों देखो ये दीन हम तक अल्लाह के नबी ने जो पहुंचाया है बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचाया है आपके घरों में दो दो महीनों के जो एक चूल्हा नहीं जला है और इसी तरीके से नौ घरों में फाके आए हैं अल्लाह के नबी ने पेट पर पत्थर बांधे है सहाबा ने पत्थर बांधे है कितने घरों में जो है फाके आए हैं सहाबा के बच्चे यतीम हुए हैं सहाबा की बीवियां बेवा हुई है और इन्होंने अपना घर छोड़ा अपना कारोबार छोड़ा और उन्होंने उनके कुर्बानी के नतीजे में दीन हम तक पहुंचाया इसलिए मेरे भाइयों दीन जो जिंदगी में आएगा बाकी रहेगा दुनिया पे फैलेगा इसके लिए अल्लाह ने जान और माल दी है जान और माल अल्लाह ने दिया ही इसके लिए है कि इसको अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी में लगाए अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने में लगाए और आमाल में लगाए नमाज में जिक्र में तिलावत में इबादत में ऐसे अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करने में लगावे मैं अपने माँ बाप की खिदमत करते हुए जी रहा हूँ अपने गैर रिश्तेदारों की खिदमत करते हुए उनके साथ एहसान करते हुए इसी तरह बकदर जरूरत अपनी जरूरत में लगाते हुए इस तरीके से अपनी जान और माल का इस्तेमाल सही हो जाए इसके लिए हिम्मत करके बताओ चार चार महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन तैयार फरमाओ भाई खड़े होकर के फरमाओ चार चार महीने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए कौन तैयार माशाल्लाह।